ज्यादा तवक्को है कि इतनी मुद्दत के बाद लौटने पर मैं चाहूं कि मेरी मंगेतर मुझे लेने एयरपोर्ट आए।
खुदा की कसम मसूद, मैंने बहुत कोशिश की कि सारे काम छोड़ के तुम्हें लेने एयरपोर्ट आऊं, लेकिन नहीं आ सकी।
ऐसा कैसा काम आ पड़ा कि नहीं आ सकी?
तुम सही हो मेरी जान, मैं माफ़ी चाहती हूँ।
लैली, तुम्हें ख्याल भी है कि इन 6 महीनों में तुमने कितनी मर्तबा माफ़ी मांगी है?
मसूद मेरी जान, ईरान से दूरी ने तुम्हें बेजार कर दिया है।
मैं बेजार नहीं हूँ, तुम बदल गई हो।
जब लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं तो गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं।
लैली, जो बकवास तुम किताबों में लिखती हो मुझसे मत करो।
तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो, और इसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है।
ठीक है, तुम ही सही हो। मैं तुमसे उन काम के बारे में जो करने चाहिए थे और नहीं किए, या जो नहीं करने चाहिए थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।
तुमने वादा किया था कि 3 महीने में यूनिवर्सिटी का काम पूरा करके कनाडा आ जाओगे।
मैंने कहा तो मेरे लौटने पर साथ बैठकर तफसील से बात करेंगे।
अभी कहाँ हो? इतना भी नहीं बताना चाहती कि वो जरूरी काम जिसकी वजह से एयरपोर्ट नहीं आई वो क्या है?
मेरी जान, मुझे एक जरूरी काम आन पड़ा जिसकी वजह से मुझे नतांज जाना पड़ा। अभी रास्ते में ही हूँ।
तुम वहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे साथ कौन है?
अकेली हूँ मसूद जान, एकदम अकेली। तुम माँ के घर जाओ, मेरा काम पूरा होते ही मैं भी वहाँ आती हूँ। साथ बैठकर बात करेंगे, सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी।
लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उनके साथ नहीं रहना चाहते।
मैंने कहा ना कि बैठकर तफसील से सारी बातें करेंगे।
तुम तो सफर करने वालों में नहीं थी, ऐसा क्या हो गया कि इतने लंबे सफर पर निकल पड़ी?
जानते हो क्यों? नहीं बोलने की सिर्फ एक वजह है।
हाँ बोलो, सुन रहा हूँ।
मैं तुमसे कहने से डर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे डर है कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, यकीन नहीं करोगे।
तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चा हूँ?
तुम मेरी तफ्तीश कर रहे हो मसूद, तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूँ?
तुम मेरी बीवी हो और मुझे पूरा हक बनता है कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या कर रही हो।
ठीक से बात करो मसूद, मैं अभी तक कानूनी तौर पर तुम्हारी बीवी नहीं हूँ।
यानी पहले से तुम्हारे जहन में ये बात है कि हम कानूनी तौर पर मियां बीवी नहीं है।
तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो, बस भी करो।
लैली, मेरे एक सवाल का साफ साफ जवाब दो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी है? अगर खामोश रही तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है।
देखो, मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा है। मुझे अफसोस है कि मैंने इतने वक्त के बाद भी तुम्हें नहीं पहचाना।
मौजू बदलो नहीं, सही है कि इतने वक्त से ईरान में नहीं था, लेकिन ऐसी खबरें कानों तक जल्दी पहुंच जाती हैं।
मसूद, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
फारूक को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है।
मसूद, शर्म नहीं आती तुम्हें? फारूक सिर्फ मेरे साथ काम करता है, शर्म करो। तुमने अपने आप को ऐसी बात करने की इजाजत कैसे दे दी? तुम तो फारूक से मिले भी नहीं हो। तुम किस तरह दूसरों के बारे में इस तरह सोच सकते हो? कैसे ये फैसला कर सकते हो तुम?
यानी तुम उससे मिलती थी?
हाँ, मैं उससे मिलती थी मसूद, मिलती थी और तुमसे भी नहीं बताया। मैंने तुमसे झूठ कहा कि यूनिवर्सिटी का काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम एक शक की मिजाज के इंसान हो, समझे?
ठीक कहती हो, एक साथ काम करने वाला और हम फिक्र इंसान वो जैसे शक करने वाले शौहर से बेहतर है।
मसूद, अपना मुंह बंद रखो, मेरे तेहरान लौटते ही सब कुछ खत्म कर देंगे, समझे तुम? सब कुछ खत्म कर देंगे। ओह मेरे खुदा।
प्यारे अब्बास, हमारी तरफ से ये नजरानाए अकीदत कबूल हो।
हाँ जिस नंबर से आप बात करना चाहते हैं वो अभी बंद है।
मुबारक
हो तो
मैंने फैसला कर लिया है, मैं कनाडा आऊंगी। मैं खुद अपने माँ बाप से बात कर लूंगी।
क्या बात है, सब मिलके इनके लिए ताली बजाएं। सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम, ठीक हो? कब पहुंचे बेटा?
तकरीबन 2 घंटे हुए हैं।
एयरपोर्ट पर कोई तकलीफ तो नहीं हुई?
नहीं मामा।
लैली कहाँ है, ठीक तो है ना? उसे फोन दो जरा, मैं उससे बात करना चाहती हूँ।
मुझे पहुँचा कर वो कहीं काम से गई है।
काम पूरा करके जल्दी से वापस आ जाओ बेटा, जब से गए हो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि अगर लैली को यूनिवर्सिटी का काम पूरा करने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो पैसे देकर हल कर लेना, बेचारी 3 महीनों से फंसी हुई है।
ठीक है,
अपना ख्याल रखना। और कोई काम तो नहीं मसूद बेटे?
नहीं, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
मैं खुदा का वास्ता मसूद को फोन करो, वो आने वाला था, वो दोनों साथ ही होंगे।
पुलिस ने नहीं कहा कोई उसके साथ था।
तुम्हें खुदा का वास्ता मसूद को फोन करो।
ये लो माँ।
नहीं
चाहिए। जाओ फोन करो, जाओ मसूद को फोन करो, जाओ।
हेलो।
सलाम वालेकुम मसूद भाई, खुशामदीद। लैली की कोई खबर है? एयरपोर्ट आई थी?
मैं भी यही सोच रहा था कि एयरपोर्ट पर मुलाकात होगी।
क्या हुआ, मुलाकात नहीं हुई?
उसने शायद तुम लोगों से भी झूठ बोला है।
मैंने सोचा शायद तुम्हें पता होगा। दरअसल पुलिस का फोन आया था कि लैली की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है।
तो तुम क्या बोल रहे हो, कब कहां?
नतांस के हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी वार्ड से फोन आया था।
कोई इलाज शुरू किया है क्या?
हाँ किया है।
इसे कहाँ ले जा रहे हैं?
इसकी हालत बहुत खराब है, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है, अब दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वहां ऑपरेशन होगा, संभाल के भाई।
संभाल के, आराम से आराम से। बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए।
खुदा के लिए संभाल के ले जाओ, संभाल के। ए खुदा, ये क्या हो गया मेरी बच्ची?
अंदर नहीं आओ, आप लोग बाहर रुकिए। माँ जी प्लीज, आप
प्लीज अंदर नहीं आए।
मेरी बच्ची को क्या हो गया?
माँ जी प्लीज,
क्या हो गया?
प्लीज
खुदा मेरी बेटी लौटा दे। खुदा हमें क्या,
यहाँ बैठ जाओ माँ। पानी चाहिए माँ?
लैली एयरपोर्ट क्यों नहीं आई थी?
बेहतर होगा हम ये बातें बाद में करें। मेरे सहन में काफी सवालात हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे।
सलाम अलैकुम डॉक्टर,
मैं मीटिंग में जा रही हूँ।
सलाम अलैकुम डॉक्टर।
वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम। अब हमारे मरीज की हालत कैसी है?
आपका मरीज के साथ क्या रिश्ता है?
मैं उसका बाप हूँ।
बहुत खराब एक्सीडेंट था, बदकिस्मती से आपकी बेटी के दिमाग पर चोट लगी है और अभी वो कोमा में है, सब्र करना होगा।
सुनिए, माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा, कोमा से बाहर कब आएगी?
हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द अज जल्द उसकी हालत स्टेबल हो जाए। इंशाल्लाह सारी टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे।
आपका शुक्रिया।
वेलकम।
आप कहना चाहती हैं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें कि क्या होगा? आखिर दुनिया में कहां बीमार का इलाज इस तरीके से होता है?
आप इत्मीनान रखें कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने मरीज के चेकअप के लिए किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी नजर में फिलहाल बेहतर है आप दुआ करें।
हमने इतना पैसा हॉस्पिटल में इसलिए नहीं भरा कि आप कहें कि बैठकर दुआ करें। ऐसा लगता है कि यहाँ के डॉक्टर सारी चीजें सिर्फ लोगों के कंधों पर डालना चाहते हैं।
सलाम अलैकुम मसूद, कैसे हो भाई? ये कब हुआ?
मैं बस ईरान पहुंचा ही था।
हौसला मत हारो, मैंने कई लोगों को देखा है जिनकी हालत इससे ज्यादा खराब थी, लेकिन वो ठीक हो गए। तुम बताए बगैर क्यों आ गए? देखो मसूद, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ।
मैं बर्बाद हो गया आरिश, जब से तुमने मुझसे कहा कि तुमने कई मरतबा फारूक और लैली को साथ देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया।
एक तरफ मैंने अपने आप से कहा कि मैं और लैली एक दूसरे से प्यार करते हैं, लैली मेरी वजह से अपने घर वालों के सामने खड़ी हो गई, और दूसरी तरफ 3 महीनों से हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाती रही, आ जाऊंगी कल आऊंगी, करते करते कनाडा नहीं आई तो नहीं आई। पास
मसूद भाई यकीन करो, मैंने सिर्फ जो कुछ देखा तुमसे कहा, यकीन करो।
जब मैं उससे फोन पर बात कर रहा था, वो इस तरह से बात कर रही थी कि मुझे शक होने लगा, मैं गुस्सा हो गया और उसे बहुत भला बुरा कहा।
सब मेरी वजह से हुआ। गफूरी साहिबा मेरी बात सुनिए, आप खुद बेहतर जानती हैं कि अगर हम ये किताब नहीं छापेंगे तो कोई दूसरा पब्लिशर ये रिस्क नहीं लेगा। इसमें जो एडिटिंग की जरूरत है मैं हल कर लूंगा, लेकिन वादा करता हूँ कि किताब के मतन में कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है? लेकिन कवर पेज बदलना होगा। जाहिर समझ रही हैं क्या कह रहा हूँ?
हाँ अच्छी तरह। ठीक है, बातिन के लिए जाहिर को कुर्बान कर सकते हैं, कहूंगी दोबारा डिजाइन करते हैं।
अगर आप इजाजत दे तो मैं खुद करवा लूंगा, वादा करता हूँ पसंद आएगा।
जरूर, आप अपने किसी ऐसे डिजाइनर के पास करवाएंगे जो एक आम इंसान और हर्मेन्यूटिक फलसफे के बीच के फर्क तक को नहीं जानता हो।
नहीं आप फिक्र ना करें, किसी ऐसे के हवाले करूंगा जो बिल्कुल आप ही की तरह जिद्दी है। उसके साथ काम करना मुश्किल है, लेकिन वादा करता हूँ कि उससे काम लेंगे तो उसका काम पसंद आएगा।
लेकिन पहले मैं उसका कोई सैंपल देखना चाहूंगी।
ओके मसूद भाई, सैंपल की सीडी तुम्हारे पास है?
किस लिए?
लैली गफूरी साहिबा एक नई और जुर्रतमंद राइटर हैं, इनका कलम बहुत ही बेहतरीन है। मसूद करमी साहब एक बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी के डिजाइनर हैं, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके लिए कुछ सैंपल्स बनाएं ताकि आप उनमें से सिलेक्ट कर सकें, ठीक है?
ठीक है, अलबत्ता ये जानते हैं कि मेरी तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती हैं।
लेकिन मसूद भी आपसे कोई कम नहीं है। ठीक है, आपस में बात करके तय कर लो, फिर मुझे बता देना। ओके, खुदा हाफिज।
एक्सक्यूज मी, एक लड़की आपके सामने खड़ी हुई है। इत्तफाक से इस किताब की मौजूआत में से एक मौजू यही है।
सही है, माफ कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। मैंने अभी पुलिस से बात की, उन्होंने कहा गाड़ी के मालिक को एक्सीडेंट की जगह कार्रवाई पूरी करने के लिए जाना होगा। लैली का सामान मिल जाए तो मुझे फोन कर देना। खुदा हाफिज।
तुम्हारे साथ आऊं?
नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूं। लैली साहिबा, एक मिनट रुकिए। सलाम अलैकुम, माफी चाहता हूँ दोबारा देर से पहुंचा।
जब भी किसी लड़की से मिलना हो तो ये आप हैं कि जिसे कम से कम 10 मिनट वक्त से पहले पहुंचना चाहिए, ना कि उस लड़की को।
जी सही है।
देखिए मैं जानती हूँ ऐसी चीजें स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंसान थोड़ी सी भी बसीरत रखता हो तो अपने आसपास के होशियार लोगों पर गौर करें, ऐसे लोग जो कि एक खास फिक्र रखते हो, जिनका अंदाज कुछ अलग हो, उनसे सीख सकता है। इतना याद रखना करमी साहब, कभी भी देर नहीं, ये बात कभी मत भूलना।
जी, सही है।
आपको याद होगा कि एक मर्तबा आपने मुझसे सवाल किया था कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की।
हाँ,
तो उसकी वजह यही
समझ
थी
गया।
कि मर्दों के तौर तरीके
मुझे सब समझ में
समझ
गया।
नहीं आते।
हाँ, मैं समझ गया।
कभी कभी ना
एक मिनट जरा आप रुकेंगी। माशाल्लाह, मैं कुछ दिन से जब कभी भी आपसे मिलता हूँ तो मुझे लगता है, देखिए मेरी नींद उड़ गई है।
हाँ तो
देखिए, ये सब बातें छोड़िए, मैं हमेशा से ही जिंदगी में एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो आपकी तरह जुर्रत के साथ मेरे सामने खड़े होकर मेरी गलतियों को बताए। वो मेरी जिंदगी के खोए हुए नज्म व ज़ब्त को मेरी जिंदगी में लौटा दे। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि आपने अभी तक जो कुछ भी कहा मेरे बारे में, उसमें से कई चीज़ों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये बात सभी लोग जानते हैं, मेरा यकीन कीजिए।
सच्ची आपकी बातों का यकीन कर लूँ?
हाँ, क्यों नहीं। अगर आप मेरी बातों पर यकीन हासिल करना चाहती हैं और मुझे अच्छे से जानना चाहती हैं तो मुझसे शादी कर लें। लैली गफूरी, आप मुझसे शादी करेंगी? सलाम अलैकुम, कितने खूबसूरत फूल हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे लिए ही है।
शुक्रिया। आरश को तुम्हारी किताब छापने की इजाज़त मिली या नहीं?
नहीं बाबा, ये तुम्हारे आरश के पास तो सिर्फ 2.5 मीटर लंबी जबान है।
तो फिर तुम इतनी खुश क्यों हो?
क्योंकि मैंने एक अच्छा पब्लिशर ढूंढ लिया है, अभी उसी के पास गई थी। उसने मुझसे वादा किया है कि एक हफ्ते के अंदर ही मेरी किताब छापने की इजाज़त निकाल लेगा।
कौन है वो?
मुझे नहीं लगता कि तुम उसे पहचानते हो। एक आदमी है जिसका नाम फारूक करामती या ऐसे ही कुछ है।
तुम्हें उससे किसने मिलवाया?
उसने मेरी किताब पढ़ी थी, उसके पब्लिशर के जरिए मुझे ढूंढा, मुझसे कहा कि उसे मेरी किताब बहुत पसंद आई। और उसके अलावा ये है कि मेरी किताबें पढ़कर उसने ये अंदाजा लगाया है कि मुझे लिखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपका शुक्रिया। अमीन भाई, जरा इस गुलदान में पानी भर दीजिए, संभल के टूट ना जाए।
तुमने अपने पब्लिशर से कहा नहीं था कि तुम्हारा नाम और पता किसी को न दे?
क्योंकि फारूक करामती उसका करीबी दोस्त है।
अगर तुम किताब के मतन को तब्दील नहीं करोगी तो कोई भी उसे छापने की इजाजत नहीं निकाल पाएगा, सिवाय उसके जिसकी डिपार्टमेंट में ऊपर तक पहचान हो, और शायद ये करामती साहब उन्हीं में से एक हो।
कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ये जरूरी है कि मेरा काम हो जाए, बस।
ये लीजिए।
शुक्रिया।
लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता।
तुम्हारे ऐसा सोचने से कुछ बदलेगा नहीं।
आज मुझे एक मोबाइल कंपनी की तरफ से उसके कुछ होर्डिंग डिजाइन करने की पेशकश मिली है, कल तक कुछ सैंपल्स डिजाइन करके देने हैं।
याद रखना, कल रात मेरे घर आना है।
अगर इस कंपनी का काम मुझे मिल जाए तो इस काम की बुनियाद पर कनाडा में काम ढूंढने के लिए मेरा रिज्यूमे थोड़ा वजनी हो जाएगा। जरा ये देखो।
तुम ये देखो। अच्छा है ना? तुम्हारे डार्क ब्लू सूट के साथ बहुत अच्छा लगेगा।
सूट के साथ?
हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि कल रात तुम मेरे घर सूट पहन कर आओ। पहनोगे ना?
तुम अपने घर वालों को धोखा देना चाहती हो लैली? क्या मतलब, कल मुझे सूट ही क्यों पहनना होगा? अब क्या दूसरे ये तय करेंगे कि मुझे क्या पहनना चाहिए?
नहीं, मैं तो बस इतना चाहती थी कि हमारे कनाडा जाने से पहले कोई हमसे नाराज ना हो।
तुम अपने घर वालों के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो लैली?
मसूद, मुझे लगता है इतनी देर से कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे थक गए होगे। खाने के लिए बाहर चले चले। ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ।
तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं है कि तुम अपने घर वालों के सामने सच्चाई पेश कर सको, तो मुझे ये बताओ कि तुम उनसे कैसे कहोगी कि तुम मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहती हो। बस एक मर्तबा इस मुल्क से बाहर निकल जाएं, फिर हम जैसे चाहें अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। वैसे भी कल रात मैं सूट ही पहनने वाला था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पसंद है। कैसा है?
अच्छा है, मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा है।
सलाम अलैकुम, पीने का पानी है? ये क्या है?
सलाम अलैकुम, रेशम के कीड़े, अब इसमें से दो तितली बन जाएंगे।
ये लीजिए।
शुक्रिया।
आपको और कुछ नहीं चाहिए?
नहीं, बस
चाय तैयार है, आइए।
तुम्हें खुद कोई फैसला लेना होगा। तुमने अपनी जिंदगी की शुरुआत सही नहीं की है लैली। अगर शुरू से ही तुमने खुद को जैसी हो वैसी ही अपने माँ बाप के सामने पेश किया होता तो आज हम इस मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होते।
देखो, वो मेरे वालिद हैं, मैं नहीं चाहती कि उनको नाराज करूं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी उन्हीं की तरह बने, जो उन्हीं की तरह मजहबी हो।
क्योंकि वो तुम्हारे वालिद हैं, वो तय करेंगे कि तुम कैसे सोचो, किस तरह अपनी जिंदगी गुजारो। ये कोई मजाक है क्या?
तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं।
मैंने फैसला कर लिया है, हम उनके खिलाफ शिकायत करेंगे। कोर्ट भी हमारी शादी के हक में फैसला देगा, उससे पहले हम शरीयत के मुताबिक निकाह कर लेते हैं, अभी आज ही। खुदा हाफिज।
खुदा हिफाजत करे।
माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं गाड़ी कब ले जा सकता हूँ?
अभी बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हैसारी तुम्हारे पास क्रेन है? ठीक है, शुक्रिया, एक घंटा लगेगा। ये गाड़ी के फोटो।
Thank you.
अपना ध्यान बनाए रखना। तुमने फ्लैट चेक अच्छे से पास कर लिया है, अब तुम अपनी पहली अकेली परवास कर सकते हो। मौसम तो साफ है, तुम्हें कोई टेंशन स्ट्रेस
नहीं? सर, मुझे अपनी पहली अकेली परवास करने का मौका देने का शुक्रिया।
तुम्हारी मेहनत थी, इंशाल्लाह कि तुम्हारी टेक ऑफ की तादाद और तुम्हारी लैंडिंग की तादाद बराबर हो।
जी सर, शुक्रिया।
गुड लक।
शुक्रिया।
गफूरी साहिबा, जब तक मेरे शागिर्द की लैंडिंग मुकम्मल नहीं हो जाती है तब तक मुझे रनवे पर ही रुकना होगा।
देर लगेगी, आप मेरे ऑफिस में जाकर बैठ सकती हैं, मैं वहाँ आता हूँ।
जी जी, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूँगी। आप अपना तारुफ कराएंगे?
मैं कैप्टन अमीरी हूँ और तकरीबन 7 सालों से इस बेस पर फ्लाइट ट्रेनर हूँ,
यानी जब से रिटायर हुआ हूँ।
अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी उन बुजुर्गवार से कैसे पहचान हुई और उनके साथ आपने जो वक्त बिताया।
बेशक, मैं और अब्बास टेक्सास के लावाक शहर के करीब रीस एयरबेस में एक साथ पढ़ते थे और हम लोग रूममेट भी थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए एक अमरीकी उसके कमरे में रहता था। ये एयरबेस का कानून था। ये इसलिए था कि जो स्टूडेंट्स अमरीकी नहीं थे उनकी अंग्रेजी सुधर जाए।
कैप्टन अमीरी,
बोलो।
माफी चाहता हूँ, इमरजेंसी है सर, एक जहाज में कुछ मुश्किल आ गई है।
ठीक है, अभी आ रहा हूँ। माफी चाहता हूँ, एक इमरजेंसी पेश आई है, मुझे कंट्रोल टावर जाना होगा। आज आपसे आगे बात नहीं कर पाऊंगा, फिर कभी करेंगे।
कोई बात नहीं, आप जाइए, ये भी अभी होना था।
मैं हमेशा सोचता था कि इश्क करना बेवकूफी का काम है। जब भी मुझे कोई कहता कि वो आशिक हो गया है और इश्क की बातें करता तो मुझे उसकी बातें बकवास लगती थी। तुमसे मिलने से पहले मुझे इस किस्म की बातें समझ में नहीं आती थी लैली। मैं सोचता था कि तुम वही हो जिसके बारे में कहते हैं किस्मत में लिखी हुई थी, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। अगर जो बातें मैंने सुनी हैं सच हुई तो तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरा दिल चाहता था कि जब मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलूं और फारूख के बारे में पूछूं तो तुम मुझे एक थप्पड़ मारो और कहो कि वो सारी बातें बकवास थी, लेकिन तुम नहीं आई। लैली, या तो जल्दी होश में आ जाओ या किसी तरीके से मुझे साबित करो कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था।
आने दो, थोड़ा नीचे। हाँ, संभाल के आने दो, बस ठीक है। ये लो भाई, गाड़ी में पड़ा था, तुम इसे अपने पास रख लो।
बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
मेरा खानदान मजहबी और रिवायती है और मेरी बेटी भी एक बा ईमान और मजहबी लड़की है। तुम दोनों में बहुत फर्क है।
आप बड़ी आसानी से मेरे खानदान के बारे में फैसला कर रहे हैं, जबकि आप अभी तक अपनी बेटी को भी ठीक से पहचान नहीं पाए।
मेरी बेटी ने सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, जो हमेशा अपनी पढ़ाई में मशगूल रही है, और उसे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे खानदान के साथ जो।
आपने मुझे यहां बुलाया ताकि इस तरह की बातें सुनाए।
तुम्हें ये बातें सुनाकर कहना चाहता हूं कि तुम यहां से बाहर निकल जाओ।
मैंने लैली से वादा किया है कि आपको कुछ बातें नहीं बताऊंगा। अगर मैंने आपको वो बातें बताई होती तो आपको अंदाजा हो जाता कि लैली का आपसे और आपके ख्याल से कोई लेना देना नहीं। गफूरी साहब, क्योंकि मैं और लैली एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम शादी कर लें और इसके बाद ईरान से बाहर चले जाएं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। बस
लैली मेरी बेटी है, क्या उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं?
अफसोस कि मैंने उससे वादा किया है। अगर आप इस शादी की इजाजत दे दें और रस्मी तौर पर निकाह हो जाने दें तो सारी चीजें बड़ी आसानी से निपट जाएंगी। मेरी नजर में ऐसा करना आपकी इज्जत और आबरू के लिहाज से बेहतर होगा। खुदा हाफिज़।
आज सुबह मैंने मसूद के साथ फोन पर बात की। उसने दोबारा पूछा कि यूनिवर्सिटी का काम पूरा करके उसके पास कब जाऊंगी। मैंने फिर से उसे कोई साफ जवाब नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि इस बारे में उसे कैसे बताऊं। दिन ब दिन हमारे दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। हाजी इस्माइल बाबाई की हमेशा तमन्ना थी कि अब्बास डॉक्टर बने और तरजीहन एक फार्मासिस्ट, शायद इसीलिए क्योंकि वो खुद एक क्लिनिक में काम करते थे। पहली मर्तबा जब मैं फारूक से मिली तो उसे मेरी एक किताब छापने के लिए देना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसा आदमी है जो बड़ी आसानी से हर किस्म की किताब छापने की इजाज़त निकाल सकता है और जो चाहे छाप सकता है। मैं चाहती थी कि मेरी किताब छप जाए, वो भी बगैर किसी सेंसर के। फारूक ने भी कबूल किया कि वो काम कर देगा, कैसे करे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आज मुझे फारूक से मिले हुए कई महीने बीत चुके हैं। आज सुबह अपनी किताब पढ़ रही थी जिसमें फारूक ने एडिटिंग की थी। किताब के मतालिब काफ़ी बदल गए थे लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। शायद ये सब फारूक की वजह से है। फारूक ने मुझे जो चीज़ें सिखाई हैं उसकी वजह से है। मुझे इश्क हो गया है, अब ईरान छोड़कर नहीं जाना चाहती।
मुझे इश्क हो गया है, अब ईरान छोड़कर नहीं जाना चाहती।